ओके बन वैशाली सुना कौन कौन से प्रदेश बन प्रकृति बन स्थिति बंद और अनुभाग बंद। तो इनमें से प्रदेश बंद और प्रकृति बंद किस कारण से होता है दीपाली बोलो योग के कारण और स्थिति और अनुभाग कषाय के कारण। जब कषाय के कारण कहेंगे तो वहाँ एक कषाय सकेंगे मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय सब लेना सबको मिलकर कषाय कह दिया जाता है। तो इनके कारण वहाँ स्थिति और अनुभाग यानी मुख्यतः मिथ्यात्व और कषाय के कारण स्थिति और अनुभाग बनते हैं। अब अगला जो हमारा प्रकरण है घाती अघाती कर्म। कल हमने आठ नाम देखे थे कर्मों के सिद्धांत बोलो। हाँ वेदने ऐसे आठ हमने कर्म देखे थे। अभी उसमें हम दो डिविजन्स करेंगे। इन आठ में से चार घाती है और चार अघाती है। अब घाती अघाती का अर्थ क्या होता है वो क्या क्या काम करते हैं किसका घात करते हैं वो सारा हम देखेंगे। देखो चौथी लाइन से हम देखते हैं कर्म संबंधी प्रस्तुत विषय बहुत ही अद्भुत और विस्मयजनक है। यह विषय समझ में आने पर वस्तु स्वरूप का चित्र हमारे अंतःचक्षु के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है यानी अपने को भाषित होने लगता है अरे मैं तो भिन्न हूँ और ये कर्म और उसका कार्य सारा मेरे से भिन्न है। पहले पत्र में हमने बंद और उदय शब्दों का अर्थ देखा था उसके बारे में अधिक जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व आठ कर्मों का स्वरूप हम देखेंगे। उनके नाम तो हमने पहले देखे ही है अभी सिद्धार्थ ने बताया ना आठ नाम उनमें से अभी देखो घाती और अघाती का दो डिविजन हो रहे तो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अंतराय पहले चार जो हमने गिने थे ना उसमें से ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और कौन अंतराय ये चार क्या है घाती कर्म है। क्या है घाती कर्म और वेदनीय आयु नाम और गोत्र ये चार अघाती कर्म। अभी उसका अर्थ देखेंगे। घाती कर्म नाम से पता चलता है कि वे किसी का घात करते हैं इसीलिए घाती कहा। तो प्रश्न उठता है कि वे किसका घात करते होंगे द्रव्य का गुण का कि पर्याय का। हाँ बोलो वैशाली द्रव्य का घात करेंगे नहीं करेंगे गुण का करेंगे पर्याय का करेंगे तो किसका करेंगे। हाँ किसी का भी नहीं चलो बहुत अच्छा किसी का भी नहीं क्यों नहीं क्योंकि द्रव्य तो अनादि अनंत है उसके गुण भी अनादि अनंत है और पर्याय भी एक समय मात्र में स्वयं घात हो जाती है नाश हो जाती है तो वे किसी का नाश है कुछ नहीं करते तो क्या करते हैं उसको भी हम देखते हैं। द्रव्य का तो कोई घात यानी नाश कर ही नहीं सकता शास्त्र में लिखा है वे जीव के गुणों का घात करते वे यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय जीव के गुणों का घात करते हैं ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो लिखा है परंतु उसका सही अर्थ क्या है उसको हमें देखना है क्योंकि शब्द वही होगे परंतु उसमें से अर्थ कैसे निकालना है ये अपने को पता चलना चाहिए। तुम पूछोगे द्रव्य और गुणों का नित्य तादात में संबंध होने के कारण गुणों का घात होना कैसे संभव है तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। अब रही बात पर्याय की पर्याय का भी नाश नहीं हो सकता क्योंकि पर्याय विरहित यानी पर्याय रहित कभी द्रव्य होगा ही नहीं हमेशा वो अपने पर्याय के साथ ही होगा और पर्याय तो एक समय की होती है। घात शब्द का अर्थ है जीव और उसके गुणों का जो सामर्थ्य स्वभाव में है यानी जो सामर्थ्य शक्ति रूप से है उसे पर्याय में प्रकट नहीं होने देना नहीं होने देना ये हम कर्म की ओर से बोल रहे कि उसने होने नहीं दिया परंतु जीव स्वयं ही तीन पर्याय रूप से परिणमा तब सामने वैसा कर्म पाया जाता है। इसलिए कहने में क्या आएगा कि कर्म ने जीव के ज्ञान पर आवरण डाला परंतु एक्चुअल क्या होता है ये कर्म का उदय यहाँ है और ये जीव का भाव तो जीव स्वयं हीन ज्ञान रूप परिणमता है तब यहाँ सामने कर्म का वैसा उदय भी पाया जाता है। अभी हमें जर्मन भाषा का ज्ञान नहीं है तो यहाँ हम जर्मन भाषा के ज्ञान रूप नहीं परिणम रहे हैं, तो यहाँ जर्मन भाषा का ज्ञानावरण कर्म उस नाम का वहाँ मौजूद है। और जब हम किसी भी शास्त्र ज्ञान हमारा उघाड़ है उतना, तो हमारा ज्ञान गुण स्वयं वैसे पर्याय प्राप्त करता है, जीव स्वयं वैसा ज्ञान अंदर से प्रकट करता है पर्याय में, तब सामने उस वैसे ज्ञान ज्ञानावरण का क्षोभ पाया जाता है, यानी वहाँ उसमें भी अधिक उघाड़ पाया जाता है। ये सारा आएगा क्रम से। तो ज्ञानावरण कर्म का अर्थ है ज्ञान पर आवरण डालने वाला कर्म। अभी शॉर्ट में तो हम ऐसे कहेंगे कि ज्ञान पर उसने आवरण डाला, तो उसको उदाहरण देते हैं वो मेघ का, कि सूर्य का प्रकाश को मेघ आने से वो ढक जाता है, परंतु ये उदाहरण जो है दृष्टांत है वो पूरे पूरा उसमें नहीं फिट बैठता। कैसे? देखो यहाँ क्या है, इसे मेघाच्छादित सूर्य का, मेघाच्छादित यानी मेघ अभी आते हैं ना, बादल आते हैं, तो पूरा सूर्य का प्रकाश अभी इन दिनों में बरसात के दिनों में नहीं दिख रहा है, तो उसको कहते हैं मेघाच्छादित सूर्य, यानी मेघ से आच्छादित सूर्य का दृष्टांत देकर समझाया जाता है। परंतु वह दृष्टांत कुछ अंशों में ही लागू होता है, पूर्णता नहीं। मेघों के पीछे सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश से विद्यमान है। अभी हम विमान से ऊपर गए मेघ के भी ऊपर, तो वहाँ तो पूरा प्रकाश है, पूरा का पूरा हम है, हमारे और सूर्य के बीच में वो मेघ दिख रहे, इसलिए हमें वो प्रकाश कम दिख रहा है। परंतु सूर्य का प्रकाश वहाँ अपने में कम नहीं हुआ है, सूर्य तो सूर्य रूप से पूरे के पूरा वहाँ उसका प्रकाश विद्यमान है, सूर्य को नहीं ढका है उसने, ये हमें वो प्रकाश नहीं दिख रहा है, ख्याल में आता है। परंतु मेघ के उस पार आप देखो तो सूर्य है कि नहीं है, पूरे पूरा है कि थोड़ा अंधुक है, ऐसा पूरा, तो अपने पूर्ण प्रकाश से विद्यमान है। परंतु ज्ञानावरण कर्म के उदय में जीव का पूर्ण ज्ञान पर्याय में प्रकट नहीं रहता, यानी ऐसा नहीं है कि पर्याय में तो पूरा ज्ञान प्रकट हुआ और फिर ज्ञानावरण ने उसको ढक लिया, ऐसा नहीं होता, यानी वो ज्ञान की पर्याय ही हीन रूप से उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं ज्ञान पर आवरण डाला। ज्ञान पर्याय में पूर्णतः प्रकट हुआ हो और उस पर ज्ञानावरण कर्म ने आवरण डाला हो, ऐसा कभी नहीं होता। हम जब कहते हैं कि हम केवल ज्ञान स्वरूप है, तो वो शक्ति अपेक्षा लेना, हमारी शक्ति केवल ज्ञान जितनी है, परंतु अभी पर्याय में हम सूक्ष्म ज्ञान रूप हीन ज्ञान रूप परिणमन कर रहे हैं, वो परिणमन हमारा अपने कारण से है। जब हम अपने कारण से परिणमन करते हैं तो वहाँ उपस्थिति है किसकी, ज्ञानावरण कर्म की, बस, और वो कुछ नहीं करता। कर्म जमरदस्य ऐसा है कि नहीं, इसको अभी जीव का ज्ञान हम हीन कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। निमित्त की हमेशा उपस्थिति होती है, वो कार्य में कुछ हेर फेर अदला बदली फेरफार मदद असर या उसको खींचना या उसको थोड़ी ज्यादा उसमें प्रेरणा देना ऐसा कुछ नहीं करता, बस उसकी ओनली प्रेजेंस इज देयर निमित्त। इन चार घाती कर्मों का फल जीव के कुछ गुणों की अवस्था में निमित्त होता है, निमित्त का है ना, इसलिए उन्हें जीव विपाकी कर्म कहते हैं। विपाक यानी फल, ये फल किसको देता है, जीव को, जीव को फल देता है ना, क्या उसके ज्ञान में दर्शन में चारित्र में श्रद्धा में और ये दान लाभ वगैरह जो वीर्य जो है उसमें कुछ फर्क पड़ता है इन कर्मों के कारण, निमित्त है, तो वहाँ नैमित्तिक भाव ऐसा कुछ न कुछ वहाँ होता है, तो उसको कहते हैं जीव विपाकी। विपाक यानी फल हमने कल देखा था, उसके और क्या नाम देखे थे, विपाक के लिए और दूसरे नाम क्या है, हाँ बोलो, एक बोलो, फिर अनुभाग, हाँ फल और रस, बराबर फल बोला था आपने, इनमें से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म जीव के ज्ञान और दर्शन गुणों की शक्ति उनकी पर्यायों में व्यक्त नहीं होने देते, इसलिए इन्हें आवरण डालने वाले कर्म कहते हैं। उसके आगे आवरण शब्द है ना, ज्ञान प्लस आवरण, ज्ञानावरण, दर्शन प्लस आवरण, दर्शनावरण। यानी उन्होंने क्या काम किया, आवरण डाला। यानी स्वभाव तो प्रकट है परंतु पूरा प्रकट होने नहीं दिया। भाषा में ऐसे हो गए कि कर्म ने होने नहीं दिया, परंतु अभी हमें निमित्त की भाषा ख्याल है। हम बोलेंगे तो निमित्त की भाषा में, परंतु उसका सही अर्थ अपने ख्याल में आना चाहिए। ये बार बार मैं इसलिए दोहराती हूँ क्योंकि जब हम निमित्त की ओर से भाषा कुछ कहते हैं तो ऐसा ही लगता है मैंने नहीं कर्म है इसीलिए हमको ऐसे भाव हुए। जीव प्रत्येक भाव स्वभाव रूप हो या विभाव रूप अपने कारण से करता है, तब सामने वैसे वैसे कर्म सहज रूप से उपस्थित होते हैं। अंतराय कर्म बाधा डालने वाला, विघ्न उपस्थित करने वाला कर्म है। हम कहते हैं दान अंतराय, दाना अंतराय। भोग में बाधा डालने वाला वो भोगांतराय, उपभोग में बाधा डालने वाला वो उपभोगांतराय। वो सारी बातें आगे आएगी। जो लोग स्वाध्याय में नहीं आते वे इसी कर्म की आड़ लेते हैं, बहाना बनाते हैं कि अरे हम तो बहुत आना चाहते थे पर क्या करें, अंतराय कर्म आड़ा आ गया। ये तो कहते हैं ना, क्यों नहीं हमारा अंतराय, हम बहुत आना चाहते हैं परंतु अंतराय कर्म आ गया। अहो बहाना बनाने वालों को तो बहाना मिल ही जाता है, जिसको आना है वो तो कैसे भी आ जाता है। क्यों सही है ना, हाँ आप आ गए नहीं, अच्छा किया। वे लोग सोचते हैं कि स्वाध्याय करने वालों को शास्त्र के वचन सुनाने से उनका समाधान होगा, परंतु वे नहीं जानते कि शास्त्र के वचनों का गलत अर्थ में प्रयोग करने से वे अपने ही अज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। कर्म का उदय है, यानी क्या क्या कहते हैं, हाँ हमारे कर्म का ऐसा उदय है, या अंतराय कर्म आड़ा गया, या क्या कहते कोई, निश्चय तो होता रहेगा परंतु व्यवहार तो करना पड़ता है ना। या कोई कहता है हम अनेकांतवादी है इसलिए यह भी सच्चा और वह भी सच्चा, आदि गलत वाक्यों का प्रयोग कुछ लोग करते हैं। ऐसे तो वाक्य हमेशा सुनने में आते हैं, उनके वक्त तो देखो हम शास्त्र की भाषा में बोलते तो इनको चुप बिठाया, परंतु उसका सही है यानी गलत अर्थ में वो वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जीव के दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, पांच बताए गुण कौन कौन से, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, इनमें बाधा डालने वाले कर्म को अंतराय कर्म कहते हैं। जैसे किसी संस्था को दान देने का हमें भाव हुआ परंतु घर के अन्य व्यक्ति ने उस संस्था के संबंध में संशय व्यक्त किया इसलिए दान नहीं दिया गया, तब उस व्यक्ति के कारण दान में बाधा आ गई ऐसा हम सोचते हैं, परंतु सच देखा जाए तो अंतराय कर्म का उदय उसमें निमित्त है। उसी तरह बैंक में हमने कुछ डिपॉजिट रखा था जो आज मिलने वाला था, परंतु बैंकों के हड़ताल के कारण हमें उन पैसों का लाभ नहीं हो रहा है, इसमें लाभांतराय का उदय निमित्त है। और हम अन्य अन्य बाह्य निमित्तों के रूप को कोसते रहते हैं। ये अंतरंग निमित्त जो कर्मों का उदय चल रहा है उसका तो पता नहीं जीव को, इसलिए बाह्य में वो राग द्वेष करता रहता है। इसी तरह भोग और उपभोग के बारे में भी समझ लेना, जिस वस्तु का एक ही बार भोग हो सकता है उसे भोग कहते हैं, जैसे भोजन। जिस वस्तु का हम बार बार भोग करते हैं उसे उपभोग कहते हैं, जैसे कपड़े गहने घर आदि। वास्तव में देखा जाए तो ऊपर बताए हुए दानादि जीव के गुण हैं। जीव अपने आप को पर्याय में शुद्धता प्रकट करने रूप दान देता है, उसका उसे लाभ होता है, उसे वह भोगता है और उपभोगता है, यानी अपने ही सुख को भोगता है और बार बार भोगता है, इसलिए भोग और उपभोग दोनों लिए। उसमें बाधा डालने वाला अंतराय कर्म है। पहले जो हमने दान लाभ भोग ये पर को दान देने की अपेक्षा से बताया था, परंतु जीव का गुण है तो सिद्ध में ये गुण होंगे कि मिट जाएंगे, तो सिद्ध भगवान किसको दान देते रहेंगे, यही अपनी शुद्धता को अपने पर्याय में प्रकट करना यही दान है। तो इसलिए ये गुणों पर घटाया, यानी ऐसा ही है, परंतु समझाने के लिए हम पर को ध्यान देने में रुकावट आती है या बाह्य चीजों का संयोगों का लाभ होने में रुकावट आती है, ऐसा समझाने के लिए समझाते हैं। जीव का वीर्य नाम का गुण है और पुरुषार्थ उसकी पर्याय है। स्वभाव की रचना पर्याय में करना उसका कार्य है। जैसा स्वभाव ज्ञान है तो अभी हमारा जितना ज्ञान प्रकट है उसमें अकेला ज्ञान गुण काम नहीं कर रहा है, उसके साथ वीर्य गुण भी काम कर रहा है कि जितना ज्ञान प्रकट है उसका उतना पर्याय में टिकाना, ये वीर्य गुण का काम। इसलिए आप कोई भी ये कर्म की पुस्तकें निकाल के देखिए तो जीव का ज्ञान कितना है, तो वहाँ हमेशा ज्ञानावरण का क्षोभ और वीर्यांतराय का क्षोभ दोनों एक साथ लेते हैं, ये समझाने के लिए। तो जो जो स्वभाव रूप पर्याय है उसकी रचना पर्याय में करना, ऐसा पुरुषार्थ का अर्थ है। विभाव में भी वैसा होता है परंतु उस पुरुषार्थ को हम उल्टा पुरुषार्थ कहते हैं। देखो अभी अपना पर्याय में कितना ज्ञान प्रकट है उसमें निमित्त कौन है, ज्ञानावरण का क्षोभ, अकेले ज्ञानावरण का क्षोभ में वीर्यांतराय का भी क्षोभ वहाँ होता है उसके साथ, दोनों मिलकर उतना ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है। हाँ जो अंतरंग में जब होता है तो उसमें निमित्त लेना, एक गुण में दूसरा गुण निमित्त लेना। ये हम बाह्य पदार्थ को तो निमित्त समझाते ही है परंतु जब अंदर में भेद करके समझाते हैं तो एक गुण का दूसरे गुण में निमित्त होता है उसकी पर्याय का। ज्ञान मेरे सारे ही गुण अनंत गुण एक साथ परिणमन रहे तो उसकी अपेक्षा हम बताते कि ये ज्ञान का भी इसमें योगदान है, इसमें वीर्य का भी है, ऐसे तो सारा। हाँ देखो हमने ये यहाँ पांच समवाय वाला प्रकरण लिया था, जब जब कोई भी कार्य होता है कोई भी पर्याय होती है तो उसमें पांच कारण आ मिलते सहज रूप से। स्वभाव यानी अभी पुद्गल में स्वभाव ही नहीं है ज्ञान करने का तो वहाँ ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी तो तीन काल में नहीं होगी। तो ज्ञान पर्याय में ज्ञान प्रकट होना या हर समय ज्ञान की पर्याय जानना 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 चालू होना ये जीव का स्वभाव है। तो दूसरा है पुरुषार्थ, तो वो कितनी पर्याय यानी वहाँ तो ये सारा पूर्व पर्याय का व्यय अभी नया पर्याय का उत्पाद ये जो है उसको लेना है पुरुषार्थ में, क्योंकि वो तो पांच समय तो मिथ्यात्व अवस्था में भी लगेंगे तो मिथ्यात्व के लिए भी जीव पुरुषार्थ करता होगा या अन्य छह द्रव्यों में पुरुषार्थ लगेगा क्योंकि छह द्रव्यों में पर्याय होती है, इसलिए वहाँ वो पूर्व पर्याय का उत्पाद व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद इसको वहाँ पुरुषार्थ कहा। तीसरा है निमित्त, निमित्त को परद्रव्य की पर्याय वो निमित्त है। होनहार यानी नियति, ये होनहार यानी भवितव्य और काल लब्धि यानी नियति। काल लब्धि यानी कौन से समय में होगा कार्य उसको कहते हैं काल लब्धि, और भवितव्य यानी कौन सी पर्याय होगी वो सारा निश्चित है। पुरुषार्थ भी अभी केवल ने ये सारा जाना है ना, हरेक गुण के हरेक समय के पर्याय में ये सारा हो रहा है, तो हमको कहाँ कहाँ ढूंढना, हमारे अनंत गुण कार्य कर रहे हैं या अनंत गुण रूप समूह है तो द्रव्य कार्य कर रहा है, मान लो एक पर्याय सबकी मिलकर हम मान लेते, तो कहाँ हर समय के पर्याय के लिए पांच कारण हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे, ये तो अपने आप होगा ऑटोमेटिक होगा तो ही बन सकता है, नहीं तो हम आपके लिए निमित्त रूप से रुक गए तो आप अन्य किसी के लिए रुक गए तो आपका और अन्य के लिए कार्य के लिए रुके तो ये पूरी लंबी चेन एक के दूसरे आधार से ऐसे रहे। तो अनंत द्रव्य है वो अनंत अपने अपना कार्य करता है तभी ये हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि सारी ही स्वतंत्रता अपने ख्याल में आती है, यानी परद्रव्य का मैं कुछ करूँ ये तो रह ही आता है, उसकी तो दृष्टि छूटी जाती है, अपनी पर्याय भी मैं ये जल्दी लाऊ ये मैं ऐसा करूँ ये क्यों नहीं हो रहा है मैं इतना ये प्रयत्न कर रही हूँ ये सारी चिंता है आकुलता कहूँ जाती है। प्रयत्न तो होंगे प्रयत्न तब भी रहेंगे परंतु उसके पीछे जो आकुलता है चिंता है वो मिट जाएगी क्योंकि सही वस्तु स्वरूप ख्याल में आ जाएगा। इसका अर्थ ऐसा मत निकालना कि अंतराय कर्म जीव का पुरुषार्थ नहीं होने देता, जीव स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता तब निमित्त पर आरोप आता है कि अंतराय कर्म ने पुरुषार्थ नहीं होने दिया, जहाँ जहाँ निमित्त को कारण कहा जाएगा वहाँ वहाँ यह बात ठीक से ध्यान में रखना कि यहाँ निमित्त की उपस्थिति बताई जा रही है, निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, परंतु निमित्त ने कुछ किया वो नहीं आता तो हमारा ये सब बिगाड़ नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं। अभी आप सुबह से जानने का कार्य कर रहे हैं तो आपने जानबूझकर क्या पुरुषार्थ किया? ज्ञान होना यही पुरुषार्थ है बात। अभी सामने चीज है, अभी इसको जानो क्या क्या पुरुषार्थ हो रहा है। ये तो सहज रूप से हो रहा है ना, हमारा ख्याल नहीं है कि ये अपना पुरुषार्थ ही इसका जानना, ये सहज है। ज्ञान भी सहज हो रहा है और पुरुषार्थ भी सहज हो रहा है। अभी मुझे आंख खोल कर जानना है तो वो वर्ण है, वो ऐसा सोचना पड़ता है, विकल्प करने पर चेहरे ये लाल है ना, अभी मुझे इसको लाल से जानना है, ऐसा लाल तरीके से जानना है। ये ब्लू है, अभी मुझे ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि ब्लू है, ऐसा होता है कि सहज हो जाता है। जिसको कलर के नाम मालूम नहीं है उसको भी वो लाल लाल दिखता है, नीला नीला है ना, उसका डिफरेंस तो कर सकता है ना वो, भले उसको कोई भी नाम दे, अंग्रेजी वाला रेड कहेगा और हिंदी वाला लाल कहेगा, तो उसमें जानने में क्या फर्क पड़ा? वो तो जैसे ज्ञान सहज है वैसे सारे अनंत गुण सहज है, वैसे वीर गुण का भी कार्य वहाँ सहज रूप से होता है। परंतु जब अभी कोई नया जीव है तो उसको पुरुषार्थ का उपदेश दिया जाता है, उसको कहते कि जो होने वाली तो होगी, पर उसमें तो तुम कुछ नहीं करोगे, जिस समय होगी उस समय होगी, उसमें भी कुछ बदल नहीं कर सकते। निमित्त तो जो होगा वहाँ भी निमित्त के लिए भी उपदेश क्या देते, अरे कुगुरु को छोड़ दो या उसकी मान्यता छोड़ दो, सच्चे देवगुरु शास्त्र की मान्यता को, उपदेश की भाषा ऐसी होती है। उसको ऐसे कहेंगे अरे तो पुरुषार्थ कर, अभी मनुष्य दुर्लभ, इतना दुर्लभ मनुष्य भव पाया है तभी इसी भव में तेरा कार्य करते। पुरुषार्थ करना यानी क्या, यहाँ तो देशना मिल रही है तो उसके अनुसार अपना सोचना, उसके ऊपर बराबर युक्ति से न्याय से विचार करना, तत्व निर्णय करना, यही पुरुषार्थ है। इससे अलावा और अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। और ये एक एक समय में हो ही रहे ना, पहले तो जीव एकदम तीव्र मिथ्यात्वी था, उसमें से कुछ उसके ऐसे विचार आए कि अरे मेरा हित किसमें होगा, तो फिर वो जिनवानी सुनने की तरफ आ गया या मंदिर में आ गया, वहाँ उसको जिनवानी के कुछ शब्द सुने, उसकी कुछ रुचि जागृत हो गई, तो ऐसे करते करते एक 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 स्टेप। अभी समझो हम 5 साल से अभ्यास कर रहे हैं, तो अभ्यास दूसरे ने कराया इसलिए नहीं, वो आप स्वयं चलकर आए कि किसी ने आपको उठा के यहाँ लाकर बिठा, तो ये भी सारा पुरुषार्थ एक 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 समय में ये सारा लागू पड़ता है। परंतु मुख्य रूप से हम क्या कहेंगे, ये तो बाकी की दृष्टि हटाकर अपनी ओर निहार, क्योंकि वो सम्यक दर्शन वाली पर्याय है ना, ये तो पूर्व की सारी पर्याय उसके पहले होगी, बिना उसके कोई कहेगा नहीं मुझे 8:05 में सम्यक दर्शन होना है, ऐसे भगवान ने जाना है तो मैं बैठा रहूंगा, मैं टीवी देखता रहूंगा 8 बजे तक, ये ऐसा स्वच्छंद नहीं है मार्ग में, ऐसा होता भी नहीं। और जिसको ऐसा भाव आता है कि भगवान ने देखा है ना, चलो अभी मौज मजा कर लो, तो उसको कभी पर्याय में प्रकट होगा ही नहीं, भगवान ने उसके लिए ऐसा देखा ही नहीं। हाँ हाँ
ये सारी 5 समय वाली, ये तो क्योंकि ये जब तक निर्णय नहीं है ना,
जब तक निमित्त से कार्य होता है कहीं अभिप्राय में बिल्कुल अंदर ऊपर बताने के लिए तो नहीं कहते हम तो अंदर कहीं अभिप्राय में पड़ा हो तब तक स्व सन्मुख दृष्टि होगी नहीं गारंटी से। कितना भी सरल मार्ग आपको तीर्थंकर भी सामने आकर बता दे तो भी जब तक ये उंधी मान्यता अंदर पड़ी है उल्टी तब तक उसको तो ख्याल में ही नहीं आया। जिनेन्द्र का ये यही है जिनागम का रहस्य बिल्कुल खोल कर सामने रख देते हैं। एक एक घंटे में ये सारी बातें आती है कैसा आत्मानुभव करना फिर भी उसमें जो पात्रता वाला जीव है वो पकड़ लेता है बिना पात्रता वाले वही शब्द सुनकर भी उसके ख्याल में नहीं आता। ये पात्रता अंदर से होती है ना उसको तो कोई वो पर्याय को बनाता नहीं तो तीव्र रुचि वाला वो सही मार्ग उसमें से ले लेता है। देखो ज्ञान दर्शन और वीर्य मिला तीसरा पैराग्राफ इन गुणों पर पूर्ण आवरण कभी नहीं पड़ता। कर्मों का कितना भी तीव्र उदय क्यों न हो इन गुणों के पर्यायों में अल्प शक्ति की व्यक्तता तो होती ही है। यानी ऐसा कोई भी जीव नहीं होगा कि जिसमें पर्याय में थोड़ा ज्ञान थोड़ा दर्शन थोड़ा वीर्य प्रकट न हो वो तो होगा ही। सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव में भी जिसको हम निगोद कहते ना अभी तो हमें पहचान है उसको निगोद कहते हैं। ये शुरू में लिखा है ना इसलिए उसका नाम नहीं लिया यहाँ क्योंकि यहाँ मैं निगोद लिखती तो फिर अरे निगोद क्या है ऐसा प्रश्न उठता इसलिए यहाँ लिखा है सूक्ष्माति सूक्ष्म यानी सूक्ष्म में सूक्ष्म ऐसे कोई जीव है उनमें भी ज्ञान का अल्प उघाड़ अवश्य रहेगा। वे कभी ज्ञान दर्शन वीर आदि से रहित नहीं होंगे। घाती कर्मों में से मोहनीय कर्म आवरण भी नहीं डालता और बाधा भी नहीं डालता। चार के देखे ना घाती पहले दोनों तो आवरण वाले अंतराय वो तो विघ्न लाने वाला बाधा लाने वाला अब मोहनीय में तो बाधा भी नहीं है और आवरण भी नहीं है तो क्या है। देखो वो बाधा भी नहीं डालता परंतु श्रद्धा चारित्र गुणों के पर्यायों में विपरीतता या विकार होने में निमित्त होता है। यानी श्रद्धा की विपरीतता उसको हम क्या कहते हैं मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन और चारित्र में विकार होते हैं उसको क्या कहते हैं राग और द्वेष। क्योंकि मिथ्या चारित्र मिटने पर भी देखो ये बात सुन लो मिथ्या चारित्र के बाद सम्यक चारित्र तो हुआ जीव को चौथे गुण स्थान में उसके राग द्वेष है कि नहीं है तो उतने प्रमाण में वह ये विकार चल रहा है चारित्र गुण का शुद्ध और अशुद्ध स्वभाव और विभाव दोनों एक साथ चल रहे चारित्र गुण में थोड़ा स्वभाव रूप है अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है उतने राग द्वेष मिट गए। अभी अप्रत्यय का नारायण प्रत्यय का नारायण संकलन है तो उतने राग द्वेष हो रहे। अभी मुनि के तीन कषाय का अभाव हुआ परंतु संज्वलन कषाय है तो उतने राग द्वेष भी वहाँ है। अभी वो ऐसे द्वेष रूप का परिणाम नहीं होता परंतु वहाँ कर्मों की उपस्थिति है वैसे ध्यान में आता है। तो यहाँ विपरीतता लाता है श्रद्धा की विपरीतता को मिथ्या तो कहते हैं और चारित्र के विकार को राग द्वेष कहते हैं। श्रद्धा की विपरीतता से ज्ञान और चारित्र भी विपरीत होते हैं। देखो श्रद्धा की यानी दर्शन मोहनी क्या करता है श्रद्धा में विपरीत कहलाता है। तो जब दर्शन मोहनी है तब जो चारित्र का विकार है उसे हम मिथ्या चारित्र कहेंगे। अब दर्शन मोहनी तो हट गया मिथ्या तो हट गया अभी श्रद्धा तो सम्यक हो गई क्योंकि वो कर्म नहीं रहे ना अभी कौन सा रह गया चारित्र मोहनी। तो चारित्र मोहनी वो तो श्रद्धा में विपरीतता भी नहीं लाएगा परंतु उसमें जो विकार है जीव में राग द्वेष परिणाम जब तक है वो दसवें गुण स्थान तक है तब तक उसको हम कहेंगे वो चारित्र की चारित्र का विकार है विभाव है। इसलिए मिथ्या शब्द में मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान वो मिथ्या चारित्र तीनों ही गर्भित है। नवीन बंध के कारण का विचार करते समय हम फिर मोहनीय कर्म संबंधी चर्चा करेंगे। घाती कर्मों को हमने जीव विपाकी कहा था क्योंकि उनका फल सीधा जीव के गुणों में मिलता है। उसी प्रकार अघाती कर्मों को अघाती में कौन कौन है और वेदनी आयु नाम गोत्र और वेदनी तो उनमें मुख्यतः पुद्गल विपाकी कर्म कहते हैं। मुख्यतः लिखा कौन सा है? उद्गल विपाकी। क्यों? उद्गल में उसका फल मिलता है। शरीर गोरा है, भूरा है, छोटा है, ऊंचा है, ताकत वाला है, बलवान है या बिल्कुल दुर्बल, ये सारे नाम कर्म में ये सारा डिसाइड होता है। तो उसको पुद्गल विपाकी, पुद्गल में जिसका फल मिलता है, क्योंकि उनका विपाक यानी रस यानी फल पुद्गलों में अर्थात बाह्य संयोगों में मिलता है। हमने देखा था कि वेदनीय, आयु, नाम एवं गोत्र चार अघाती कर्म है। वेदनीय कर्म की दो उत्तर प्रकृति है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो साता वेदनीय कर्म के उदय में जीव को अनुकूल संयोग प्राप्त होते हैं और असाता कर्म के उदय में प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं। ये साता असाता कर्म का अर्थ होता है। आयु, नाम एवं गोत्र कर्म का शरीर के साथ निमित्तपना है। जन्म से मरण तक के काल को हम आयु कहते हैं। सूक्ष्मता से देखेंगे तो मरण के अनंतर समय में यानी इमीडिएट नेक्स्ट समय में विग्रह गति में ही नवीन आयु का उदय प्रारंभ होता है। यानी आयु कर्म जो बांधा है उसका उदय यानी उसके परमाणु छूटकर चले जाना चालू हो जाता है और हमको कहते हैं वो उसका नया जीवन चालू हो गया, नई आयु प्रारंभ हो गई। देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु और नरकायु ऐसी आयु कर्म की चार उत्तर प्रकृति है। आयु के दो भेद है, ये जो आयु कर्म है ना, या आयु जो है वो आयु दो प्रकार की, एक गुज्जमान आयु अवरुण, कौन सी आयु? गुज्जमान आयु उसमें पढ़ो, एक तो गुज्जमान आयु पांचवी लाइन छठी लाइन अभी चलेगी और दूसरी बद्यमान आयु, कौन सी दो है वैशाली? और बद्यमान, भुज यानी जो भोग रहा है और बद्य यानी जो बांध रहा है या जो बांधी है। हम अभी मनुष्य पर्याय में है अर्थात मनुष्यायु भोग रहे हैं, यह हमारी भुज्यमान आयु है। वर्तमान में जिस आयु कर्म का उदय चल रहा हो उसे भुज्यमान आयु कहते हैं। सुनो साहिब, अभी कौन सी आयु है तुम्हारी? मनुष्य आयु। अभी ध्यान से सुनो, तो वर्तमान में जिस आयु कर्म का उदय चल रहा हो उसे भुज्यमान आयु कहते हैं। हमारे इस भव में हम भविष्य के एक भव संबंधी आयु बांधते, कितने भवों की? एक। जब यहाँ से मरण होगा अगले भव में जाएंगे और तब जब आयु बंधने का काल आएगा, हमने देखा था ना अपकर्ष काल होते, तो उस समय उसके आगे वाला एक भव की आयु बांधेगी। ऐसा नहीं कि एक साथ हम 10 भवों की बांध देते, एक एक भव की आयु एट अ टाइम बनती है, उसे बद्यमान आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? बद्यमान। नाम कर्म की 93 उत्तर प्रकृति है। शास्त्र में इसे चित्रकार की उपमा दी है, जिस तरह चित्रकार चित्र विचित्र आकार एवं रंगों की रचना चित्रण करता है, उसी तरह नाम कर्म के उदय में गति, जाति, गति यानी चार गति हमने देखी है, जाति में एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चतुर इंद्रिय जाति, पंच इंद्रिय जाति, ये पांच प्रकार की जाति कहलाती है। शरीर यानी औदारिक शरीर, वैकरिक शरीर, आरक शरीर वगैरह, वो तेजस शरीर, कामान शरीर, ऐसे पांच अलग अलग शरीर नाम कर्म है। सहनन यानी वो हड्डियों कितने बलवान है, जैसे वज्र, वृषभ, नाराज सहनन कहलाता है। तो इन्हें वज्र की हड्डी और वज्र का ही वेस्टर्न यानी पेरिओस्टियम ऊपर का कवरिंग और वज्र की उनके वो संधि ने जॉइंट्स, ऐसे वो शरीर होता है, तो उसमें ये नाम कर्म निमित्त होता है। संस्थान यानी शेप आकार, कोई की प्रोपोर्शनेट हो, कोई तो नीचे जा रहा है ऊपर पतला है, कोई ऊपर मोटा दिख रहा है, नीचे कमर के नीचे पतला दिखता है, कोई कुबड़ा है, कोई ऐसे फिंगना है, ये अलग अलग उसको कहते हैं संस्थान। शरीर का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि शरीर संबंधी फल मिलता है, कौन से कर्म के कारण? नाम कर्म के कारण। अर्थात शरीर की लंबाई, रंग रूप, हड्डियों की मजबूती, अवयवों की रचना, चाल, ये विहायोगति है ना, तो कैसे चाल कैसी है वो भी इसमें है। स्वर, श्वासोच्छ्वास, यश अपयश आदि अनेक बातें होती है। इतना ही नहीं, तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म का ही भेद है। ये तीर्थंकर प्रकृति का नाम कब सुना था? रत्नगरन शौकाचार्य में अभी चल रहा है अपना। तीर्थंकर प्रकृति कौन मानता है? हाँ हाँ, ये षोडश कारण भावना भाता है। जो जीव तीर्थंकर और केवली के पाद मूल में, किसी जीव के सम्यक्त्व की इतनी विशुद्धि हो जाती है, विशुद्ध परिणाम बढ़ते हैं और शुभ भाव भी उस प्रकार के, उच्च प्रकार के हो जाते हैं कि वहाँ तीर्थंकर प्रकृति नाम की, ये नाम कर्म की प्रकृति बनती है, बंद होता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो क्या है, अभी तो वो फल नहीं देंगे, नाम कर्म है। अभी हम क्या सुबह से, अभी तीर्थंकर प्रकृति की छोड़ दो, अभी हम सुबह से शाम तक हमने क्या क्या किया, तो कभी बहुत ऐसा गुस्सा किया, ऐसा किया कि जैसे एक इंद्रिय की, कभी एक इंद्रिय का, एक इंद्रिय जाति का नाम कर्म बांधा। दिन में जितने परिणाम अलग अलग करते हैं ना, वैसे अलग अलग कर्म भी बांधते, गति भी। हाँ हाँ, तो अंदर को पड़े रहते। वैसे तीर्थंकर कोई प्रकृति ऐसी होती है कि बंद होकर वो पड़ी रहती है और उसका उदय विशिष्ट समय में ही आता है। तो ये अंदर बंद कर अंदर रह जाती है, हर समय उसका उदय हो या ऐसा नहीं है, तेरहवे गुण स्थान में उसका उदय होगा। और ये नाम कर्म अलग अलग जो बांधते हैं, अभी नरक गति नाम कर्म है, वो कोई नरक गति बांधेगा और कभी भोगेगा भी नहीं, ऐसा भी जी होगा। जैसे मिथ्या तो अवस्था में नरक गति बांध रहा है, अभी संयुक्त तो होने के बाद वो तो देवगति बांध रहा है, कोई मनुष्य तो देवगति बांध रहा है। अभी श्रेणिक राजा की कथा सुनो, सम्यक दर्शन, पहले उसने नरक गति बांधी थी, नरकायु भी बांधी थी और वो नरक में गया, वो भी ठीक मिथ्या तो अवस्था में। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद हर समय वो देवगति बांध रहे, शायद समय दृष्टि है, इसलिए मरण के समय में भी मिथ्या पर जाने का कोई सवाल नहीं। तो जब से समय दर्शन हो गया उसको, तब से वो कंटिन्यूसली देवगति बांध रहा है, गया नरक में। तो नरक गति का उदय कहाँ से आया? पहले जो बांधी अंदर पड़ी थी तब उसका उदय आ गया। अब नरक में भी कौन सी गति बांध रहा है? बांध रहा है मनुष्य गति। नारकी जो समय दृष्टि है वो तो मनुष्य गति बांधेगा, क्योंकि अभी वहाँ से आकर वो पहले तीर्थंकर हो जाएंगे, डायरेक्ट तीर्थंकर होंगे। अभी नरक में भी तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे वो हर समय। तीर्थंकर प्रकृति का बंधन अगर मिथ्यात्व में जाता है जीव, तो उतने काल के लिए रुक जाता है। अदरवाइज तीर्थंकर प्रकृति का बंधन प्रारंभ तो केवली के पादमूल में किया था, प्रारंभ, बाद में कंटिन्यूएशन में उसका बंध चलता रहता है। आएगा ही नहीं, वैसा ही क्षय हो जाएगा उसका। हमने ऐसे बहुत सी प्रकृति देखी, अभी जो आहारक प्रकृति बनती है मुनियों को, बनती तो सातवें आठवें गुण स्थान में, और उदय कब आता है? छठे में। ये बहुत इसमें बहुत इन्हें मजे की बहुत सी बातें, किसी किसी का बंध पहले होता है, उदय बहुत बाद आता है, जैसे तीर्थंकर प्रकृति, या किसी किसी का उदय पहले आता है, बंध ऊपर के गुण स्थानों में होता है, जैसे आहारक प्रकृति। ये तो डिटेल्स जब जाएंगे तब उसमें बहुत मजे की बात है। अभी तो हमारा जो विषय चल रहा है ना, उस पर हम ज्यादा केंद्रित करते हैं। ख्याल आता है सिद्धार्थ? हाँ, बालबोध भाग एक में तीर्थंकर भगवान पाठ तुम्हें याद होगा। तीर्थंकरों को तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय होता है, जिसके कारण समो शरणादि विभूति उन्हें प्राप्त होती है। आपने पढ़ा है बालबोध में ये पाठ, तीर्थंकर भगवान नाम का पढ़ा होगा, अभी जाकर पढ़ना। हाँ, ये ख्याल आइए। गोत्र कर्म की दो उत्तर प्रकृति है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उनके उदय में उच्च या नीच गोत्र प्राप्त होता है, उच्च या नीच कुल में जन्म होता है। ये सभी बाह्य संयोग वास्तव में सुख दुख के कारण नहीं है, हम तो बाह्य संयोगों को ही सुख दुख का कारण मानते हैं, अपितु जीव के मोह राग द्वेष ही सुख दुख के कारण है। क्यों ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि हम कि जीव का मोह राग द्वेष ही उससे दुख का कारण है। देखो आगे क्या लिखा है, निर्मोही मुनिराज, यानी जिसको मोह नहीं है ऐसे जो मुनिराज है उनको रिद्धि या परिचय प्राप्त होने पर सुख या दुख उत्पन्न नहीं होते। कोई बड़ी वृद्धि प्राप्त हुई तो वो हर्षित नहीं होते और कोई भयंकर उपसर्ग आ पड़ा तो भी वो दुखित नहीं हो जाते। इससे विपरीत मोही जीव को कुछ कारण मिले या न भी मिले, देखो वहाँ तो रिद्धि प्राप्त हुई और परिचय आया यानी कारण तो मिले। अभी हमारे जैसों को कुछ बाहर कारण मिले या न मिले, आराम से बैठे है और मन में क्या क्या चक्कर चलता है पूरी दुनिया को उलट पुलट कर देते हैं तो कोई कारण मिले या न मिले उसे स्वयं के संकल्पों के कारण सुख दुख होता रहता है। कोई देरी से आया, अरे क्या हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा, कौन से हॉस्पिटल में गया है, उसका पैर टूटा के क्या हुआ, ये सारा विकल्प में इतना दुखी हो जाते हैं। क्यों, ये अपने अनुभव की बात है। इस घाती अघाती कर्मों के उदय में कैसे फल मिलते हैं एवं जीव की कैसी दशा होती है इसका सरल एवं सविस्तार वर्णन पंडित रोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में दूसरे अध्याय में कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था इस शीर्षक के अंतर्गत किया हुआ है। तुम अवश्य उसे पढ़ो, बार बार पढ़ो, मात्र पत्र रूप स्वाध्याय से कोई फायदा नहीं है। अब ग्रंथों का अध्ययन भी तुम्हें स्वयं करना होगा। जैसे पहले तुम तुम्हारे बच्चों को रोहित या रोहन को अपने हाथों से खिलाती थी, परंतु जब से ये बड़े बच्चे बड़े होने लगे हैं तब से तुम उन्हें स्वयं भोजन करने की आदत डाल रही हो। यानी ग्रंथों का भी स्वयं अध्ययन करना चाहिए। यहाँ तो ये तो खाली आपकी जिज्ञासा जागृत हो या जो शब्द है उनका सरल तरह से आपको अर्थ ख्याल में आए, इसलिए ये पुस्तकों की भी ऐसी भावना हुई कि ये पुस्तक लिखे, क्योंकि आपको भी नाम यानी कर्म के नाम पता चले, उदय किसे कहते हैं, बंद किसे कहते हैं, ये क्या क्या अवस्था के अर्थ ख्याल में आए। अब आप जाकर ग्रंथ पढ़ोगी तो उसका सरल अर्थ यानी अर्थ उसका सहज रूप से अपने ख्याल में आ जाएगा। आठ कर्मों में से आयु कर्मों को छोड़कर अन्य सात कर्मों का बंध तो निरंतर चलता ही रहता है। निरंतर यानी एक समय भी ऐसा नहीं है कि इन सात कर्मों का बंध नहीं हुआ हो। हर समय हर समय हर समय ये सातों ही कर्म बनते हैं। आयु कर्म का बंध तो कभी कभी होता है, आयु बंध संबंधी चर्चा हम बाद में करेंगे। जीव के साथ सत्ता में पड़े हुए कर्मों में से, सत्ता में हमने देखे ना अंदर पड़े रहते बंधने के बाद, तो उनमें से अपनी अपनी स्थिति पूरी होने पर, हमने देखा था कि कर्म में स्थिति बंद होता है, कितने काल तक जीव के साथ रहेंगे वो निश्चित है, उतनी स्थिति पूरी होने पर वो निकल जाएंगे। होने पर आठों ही कर्म निरंतर हर समय उदय में आते रहते हैं। हमने देखा था ना आयु का उदय भी निरंतर चलता है। अभी मनुष्य आयु का उदय समाप्त हुआ तो अगले ही समय में अन्य देवायु का उदय चालू हो जाएगा। यानी बंध तो निरंतर सात कर्मों का होता है और आयु का बंध कभी कभी होता है, परंतु उदय तो कितने कर्मों का चल रहा है, आठों ही कर्मों का उदय निरंतर चल रहा है। तुम पूछोगी सात या आठ कर्मों का बंध भी निरंतर चालू रहता है और आठों ही कर्मों का उदय भी निरंतर चालू रहता है, तो इसमें से छूटने का कोई मार्ग भी तो होगा या नहीं कि बंध और उदय का यह रेट ऐसा ही चालू रहेगा। हम देखते हैं ना यहाँ बंद किया यहाँ उदय, बंद उदय बंद उदय, सातों ही बंद रहे, आयु भी कभी कभी बंद रही है और आठों का उदय भी चल रहा है। कल हमने देखा था टांकी में ऊपर से भी पानी आ रहा है और नीचे भी चीज जा रहा है, तो हमेशा फुल रहेगी। तो यहाँ क्या पूछते हैं कि इसमें से छूटने का भी कोई मार्ग होगा क्या नहीं होगा। पूजा अर्चा व्रत उपवास करने पर कर्म नष्ट होंगे कि नहीं। पूजा में तो हम कहते हैं कि अष्ट कर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा, तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ, हमने पहले पाप किया होगा तो पुण्य करके उसको बाल करेंगे तब तो कोई कर्म शेष नहीं बचेगा। ये सारे प्रश्न है, यानी पहले का पाप और अभी का पुण्य प्लस माइनस, बाल करना या माइनस करना, तो वो तो नलीफाई हो जाएंगे ना, पाप पुण्य एक दूसरे में क्रॉस होकर ऐसी क्षमता नहीं होती, उसको नहीं कहते। हाँ हाँ, जरा धीरज रखो, सबसे पहले यह बात ध्यान में ले लो कि पाप और पुण्य कर्म प्रकृति के नाम है, विशेषण है। जैसे हमने घाती और अघाती देखा, तैसे वैसे पाप प्रकृति और पुण्य प्रकृति, पाप कर्म और पुण्य कर्म, ये कर्म के नाम है। पाप प्रकृति बंधने में कारणभूत अशुभ भावों को भी पाप कहते हैं। देखो, हम जिसको भी ना हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह पाप है, परंतु उसको पाप नाम क्यों पढ़ा? उनके कारण पाप कर्म बनते हैं। क्या कार्य क्या हुआ? पाप नाम के कर्म बंधे। अभी ये पाप प्रकृति कौन सी, वो बाद में देखेंगे। तो पाप कर्म बंधा, पाप प्रकृति बंधी, किस कारण बंधी? हिंसा, जो चोरी, कुशील, इससे बंधी। तो कार्य क्या हुआ? पाप प्रकृति बंधी। तो उस कारण जो है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि, उसको भी हमने पाप कह दिया। तो इसको क्या कहते हैं कि कारण में कार्य का उपचार किया, आरोप किया। कारण तो हुआ पाप प्रकृति बंधी। किससे बंधी? हिंसा, झूठ, चोरी वगैरह, अशुभ भाव से बंधी। तो इसलिए अशुभ भाव को भी पाप कह दिया। यही बात यहाँ लिखे देखो। पाप प्रकृति बंधने में कारणभूत अशुभ भावों को भी पाप कहते हैं। वह कारण में कार्य का आरोप करके किया हुआ उपचार कथन है। दीपाली ख्याल में आता है? हाँ। उसी प्रकार जिन परिणामों से पुण्य प्रकृति बंधी है, बनती है, उन शुभ भावों को उपचार से पुण्य कहते हैं। देव पूजा है, शास्त्र स्वाध्याय, ये सारे जो है उसको पुण्य हम कहते हैं, क्योंकि उनके कारण पुण्य प्रकृति बनती है। हाँ, देखो कारण क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि कारण है। कार्य क्या हुआ? उस हाँ, उस समय क्या कार्य हुआ? पाप प्रकृति बंधे, पाप प्रकृति बंधी यह कार्य हुआ। उसमें जीव के कौन से भाव निमित्त है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव निमित्त है। तो उन भावों को भी हमने पाप कह दिया। चारों घाती कर्म तो पाप रूप ही है। कौन से चार घाती कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, सारे ही पाप प्रकृतियां हैं। और चार आघाती कर्मों में प्रत्येक के दो दो भेद है। अभी वेदनीय, वेदनीय में भी दो भेद देखे थे, साता और असाता। तो साता पुण्य रूप है, असाता पाप प्रकृति है। गोत्र कर्म में उच्च गोत्र और नीच गोत्र, उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है, नीच गोत्र पाप प्रकृति है। ऐसे सब में लेना। देखो इसमें क्या क्या लिखा है, पुण्य चारों घाती कर्म तो पाप रूप है, और अघाती कर्मों में प्रत्येक के दो दो भेद है, पुण्य और पाप। अभी पुण्य प्रकृति पहले लिए, साता वेदनीय, देवायु, मनुष्यायु, शुभ नाम और उच्च गोत्र आदि पुण्य प्रकृति है। और असाता वेदनीय, नरकायु, अशुभ नाम, नीच गोत्र आदि पाप प्रकृति है। ख्याल में आने, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति किस में पड़ता है? अघाती में। और घाती में कौन सी है? सारे ही पाप रूप है। हमने अभी देखा था कि सात या आठ कर्म प्रकृति का बंध निरंतर यानी हर समय होता है। तुम शुभ भाव करो या अशुभ भाव करो, आठों कर्म बनते हैं। देखो अभी एक सिद्धांत आने वाला है आगे, उनसे बंध ही होता है, बंध से छुटकारा नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के शुभ भाव करने पर आठों कर्मों का बंध होता है, यानी अशुभ काम करे, अशुभ बंध भाव करे तो भी आठ कर्म बनते, और शुभ भाव करे तो भी आठ। तो आठ में से चार ज्ञानावरण बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? शुभ भाव करने पर बंधेंगे कि अशुभ भाव के दोनों के होंगे? हाँ, दोनों पर, यानी पुण्य करो या पाप करो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय तो बंधेंगे ही, बराबर। मैंने पुण्य किया तो भी पाप प्रकृति बंदी की नहीं बंदी, ये सिद्धांत यहाँ बता रहे। देखो फिर से कि शुभ भाव करने पर, नीचे से दूसरी लाइन, आठों कर्मों का बंध होता है, उनमें से ज्ञानावरण, दर्शन, मौन और अंतरा, ये चार घाती कर्म तो पाप रूप ही है। और फिर पुण्य करने से क्या फायदा हुआ, तो अघाती कर्म में जो पुण्य और पाप रूप है उसमें पुण्य प्रकृति बंदी। तो आघाती कर्म के पुण्य और पाप प्रकृति में से उसे पुण्य प्रकृति का बंध होता है, अर्थात शुभ भाव यानी पुण्य करने पर पुण्य और पाप दोनों का बंध होता है। ख्याल में है अभी नहीं आया? देखो मैं बताती हूँ, हमने घाती और अघाती देखे थे ना, दो प्रकार के कर्म, कोई भी दे छोटा कद चले बचाओ। कर्म दो प्रकार के देखे थे ना, घाती और अघाती, बराबर। अब ये सारे ही पाप रूप है और इसमें कोई पाप रूप है और कोई पुण्य रूप है। अब शुभ यानी शुभ कार्य किया, देव पूजा स्वाध्याय की, आठों ही कर्मों का भी हम आयु को भी गिन के ले रहे, तो आठों ही कर्मों में से यानी आठों ही कर्म बंधेंगे, तो आठ कर्म बंधेंगे तो ये चार तो पाप रूप बंधेंगे, पुण्य किया ना अभी हमने, ज्ञानावरण भी चार बंधे, तो ये पाप प्रकृति बंधी और इनमें से पुण्य प्रकृति बंधी, बराबर। अभी देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम तप आदि किए तो क्या हुआ, चार तो पाप रूप बंदी, अभी पाप करने से बहुत तीव्र बंधेगी, पुण्य के इसलिए उसके अनुभव कम है परंतु बंधेगी तो सही, और यहाँ पुण्य बंधा। अभी किसी ने अशुभ भाव किया अकेले तो क्या बंधा, दोनों में पाप ही पाप बंधा, चार पाप और इसमें से भी सारे पाप रूप बंधे। ख्याल आया? हाँ। इसका तात्पर्य यह है कि पुण्य करने पर पुण्य और पाप प्रकृति का बंध होता है और पाप करने पर पाप और पाप प्रकृति का बंध होता है। इसी कारण शास्त्र में कथन आता है, पाप को पाप तो सारी दुनिया कहती है, ये योगसार में लिखा है, योगनिद्रा में आचार्य ने लिखा है, परंतु पुण्य भी पाप है यह बात कोई विरले पुरुष ही जानते हैं। जो जीव को बंधन में डाले वह पवित्र कैसे हो सकता है, वह हितकर कैसे हो सकता है? इस बात को सुनकर तुम यह मत कहना, चलो अच्छा हो गया, अब हमें पुण्य करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे छोड़ देंगे। छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे, पाप ही पाप में। देखो बेटी, शास्त्र में तो उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए होता है, जीवों के अपने कल्याण के लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं। स्वाध्याय में साहिल, स्वाध्याय में जो आना है, ऐसा जो कोई उपदेश देता है वो किसके कल्याण के लिए, मम्मी के कल्याण के लिए, के भाई के, के बहन के, हाँ बेटा, अपने कल्याण के लिए, किसके, इधर देखो, यहाँ स्वाध्याय में आना ऐसा जो उपदेश दिया वो आपके कल्याण के लिए के मम्मी के कल्याण के लिए, मम्मी के कल्याण, क्या कल्याण हुआ मम्मी का मालूम नहीं, तो अभी मालूम करो। देखो ये जो उपदेश देते हैं तो जीवों के अपने कल्याण के लिए, आप यहाँ आओगे, ये कर्म की बातें सुनोगे तो पता चलेगा कि इन सारे के जानने वाला मैं हूँ, जीव कल्याण में फायदा लाभ, वो तो सिंसियरली बता रहे हैं ना, मम्मी जितने सोच करे तो मम्मी का ही कल्याण होगा, हमारा क्यों होगा। देखो अभी सुनो, विरले ही पुरुष जानते हैं, जो जीव को बंधन में डाले वह पवित्र कैसे हो सकता है, वह हितकर कैसे हो सकता है, यानी यहाँ पुण्य प्रकृति की भी बात चल रही है। क्या करते हैं वो जीव को तो बंधन में डालते हैं, पुण्य प्रकृति बंधी तो हमें क्या लगता है, अच्छा हुआ, तीर्थंकर प्रकृति बंधी, बहुत अच्छा हुआ, सबसे बहुत बढ़िया हुआ, क्या बढ़िया हुआ, बंद हुआ ना। अभिप्राय में अगर हम बंद को अच्छा मानते हैं तो बंद तत्व की भूल हो गई है। जब तक सात तत्वों का जो का क्यों श्रद्धा नहीं, श्रद्धा अभी तो वो भाव भी कर रहा है, तीर्थंकर प्रकृति बांध भी रहे है, परंतु उसके अभिप्राय में वो कभी उसको अच्छी नहीं समझ रहा है। अच्छी समझने वाले को तो बंदे ही है, उसको तो समझ तो ही नहीं होगा, तो तीर्थंकर प्रकृति तो दूर रही क्योंकि उसने बंद को अच्छा माना। ये अभिप्राय में मान्यता में सारा है, ज्ञान में तो जैसा है वैसे अभी हमको शुभ भाव आ रहे हैं, अभी ऐसे बन योग्य प्रकृति बन रही है, ये सारा ज्ञान में तो आएगा, परंतु उसको वो अच्छा नहीं मान रहा है। ये अभिप्राय की भूल है अगर माने तो। क्या प्रश्न है? हाँ ना, तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, वो किस कारण बंदी? षोडश कारण नाम के जो पुण्य रूप प्रकृति भाव है उसके कारण तीर्थंकर प्रकृति भी बंदी। उसके साथ साथ ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय मोहनीय बंदी की नहीं? हाँ बंदी ना, वो भी बंदी, ये भी बंदी, बिल्कुल। देखो तीर्थंकर प्रकृति तो आठवें गुणस्थान तक बनती है और ज्ञानावरण का बंध तो दसवें गुणस्थान तक, तो वहाँ तो ऊपर के गुणस्थान और श्रेणी में नवे गुणस्थान में क्या पाप होगा? कुछ पाप परिणाम है, शुभ कितने विशुद्ध परिणाम है। दसवें गुणस्थान में सूक्ष्म लोग क्या है, वो तो पुण्य ही पुण्य है, उच्च प्रकार का पुण्य होगा, तब भी वो ज्ञानावरण बन रहा है, दर्शनावरण बन रहा है, अंतराय बन रहा है। हाँ ऐसा ही होता है, वो तो बिल्कुल छोटा यानी जघन्य स्थिति वाला बनता है, मगर बंध तो है ना। हमारे जैसा बड़ा सागरों का बंध नहीं हुआ, वहाँ एक एक अंतर्मूर्त का बंध है, मगर है तो सही ना।
नियम क्या है? कोई भी परिणाम करो या
ये इसमें भी बहुत और ज्यादा, यानी जितने डिटेल में जाओ ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में, और भी आयु का बंध भी सातवें तक ही आगे नहीं है, मोहनीय का भी बंध नौवें तक ही है ना, चारित्र मोहनीय का बंध दसवें में बंध नहीं है, उदय है लोक का बंध नहीं, वो जघन्य लोग है ना उससे बंध है, लोक का बंध नहीं है, ज्ञानावरण बंध रहे। सूक्ष्म लोक का उदय है तो ज्ञानावरण दर्शनावरण वहाँ बंद रहेगा, दसवें गुणस्थान में बंद है, बारहवें गुणस्थान में ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, अभी वहाँ बंद रुक गए ज्ञानावरण का। ये ऐसे ये सारी व्यवस्था इतनी बिल्कुल, यानी उसमें कुछ लूप होल्स नहीं है, एक सहज है, और ये सारा समझ में आता है ना तो बिल्कुल निराकुलता हो जाती है, भय अपना समाप्त होता है। जब अज्ञान है कर्म के बारे में तब तक उसके बारे में भय लगते हैं, अब ये सारी बातें ख्याल में आई, ये सारे अपने हाथ की बात है, अपने अपनी दृष्टि करो, चलो ये सब छूटने वाले हैं अपने आप। देखो इसी मान्यता करना अभिप्राय में पुण्य छोड़ने योग्य है। देखो पहला वाक्य क्या हमने दूसरी लाइन में पढ़ा, पुण्य छोड़ दोगी तो क्या पाप करके नरक निगोद में जाने की इच्छा है? पुण्य छोड़ने योग्य हेय है ऐसी मान्यता करनी है, अभिप्राय में लेना है, ऐसे यथार्थ अभिप्राय के साथ पुण्य और पाप दोनों को छोड़कर शुद्धात्मा में लीन होना है, शुभोपयोग और अशुभोपयोग छोड़कर शुद्धोपयोग प्रकट करना है, इस प्रकार का यथार्थ अर्थ ग्रहण करना चाहिए। यानी पुण्य छूटेगा नहीं अभी, ये तो अभी हमने देखा ना, पुण्य तो चलता रहेगा उसका बंध भी, परंतु वो छोड़ने लायक है ऐसा अभिप्राय पहले लेगा जी। मिथ्यात्व अवस्था में ही ऐसा अभिप्राय प्रकट करते करते वो मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक होगा, सम्यक होने के बाद वो अभिप्राय सुधरेगा ऐसी बात नहीं, गलत अभिप्राय के साथ तो उसको सम्यक भी नहीं होगा। तो ये अभिप्राय सुधारना या पुरुषार्थ करना या तत्व निर्णय करना ये सारी एक ही बात। अब प्रश्न उठता है कि आठों ही कर्मों का उदय निरंतर होता है और जीव को उसका फल मिलता है, परंतु नवीन बंध क्यों होता है? क्या आठों ही कर्मों का उदय नवीन बंध में कारण है? ये सारा अपना शाम को हुआ है ना, अभी पंचादेह में लिया था, ये कौन से कर्म के कारण नया बंध होता है, ये बात आई थी पहले। क्या आठों ही कर्मों का उदय नवीन बंध में कारण है? हमने देखा था कि आठ कर्मों के उदय में क्या क्या फल मिलते हैं। देखो यहाँ एक टेबल बनाया, ये ज्ञानावरण से ज्ञान की हीनता, ये जो इस साइड के है वो सारे घाती कर्म है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में सारे अघाती कर्म रखे। दूसरे नंबर पर दर्शनावरण के कारण दर्शन की हीनता, तीसरे में मोहनीय के कारण श्रद्धा और चारित्र की विपरीतता, और फिर अंतराय कर्म के कारण दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में बाधा। वैसे यहाँ लेना अघाती में, उसमें पहला वेदनीय लिया है, संयोगों की अनुकूलता या प्रतिकूलता, फिर दूसरे में आयु, तीसरे में शरीरादि की रचना, ये नाम कर्म का है, और गोत्र कर्म से उच्च या नीच गोत्र की प्राप्ति होना। अब इन आठों बातों में से कौन सी बातें नवीन कर्म बंध में कारण है उसका विचार करेंगे। ज्ञान दर्शन वीर्य तो जीव का स्वभाव है, अभी हमने देखा था ना, वो स्वभाव हमेशा प्रकट रहेगा कुछ न कुछ अंश, वह थोड़ा प्रकट है और थोड़ा अप्रकट है। जो प्रकट है वह तो जीव का स्वभाव है। अभी जो हमें लाइट दिख रहा है वो मेघों का है या सूर्य का है? सूर्य का है। वैसे अभी जो ज्ञान प्रकट है वो कर्म का है कि जीव का है? जीव का। हाँ, तो वह जीव का स्वभाव है, और स्वभाव कभी बंध का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव से ही बंध होने लगे तो अबंध कभी हो ही नहीं सकता है। यदि स्वभाव ही बंध का कारण होगा तो बंध का अभाव कभी नहीं होगा। ज्ञान दर्शन आदि जो अप्रकट है, अभी हमारे जो प्रकट है उससे तो बंध नहीं होगा। अब कोई कहेगा अभी जो ढका हुआ है उससे तो बंध होगा। जो अप्रकट है, अभी हमारा इतना सा ज्ञान प्रकट है और इतना सारा ढका हुआ है, तो प्रकट से तो बंध नहीं होता क्योंकि वो स्वभाव का अंश है। तो ये ढका हुआ इससे तो होगा कि नहीं बंध, ऐसा प्रश्न है। तो जो अप्रकट है उनका तो अभाव ही है, उनकी नास्ती है ना, वहाँ उनकी तो उपस्थिति नहीं है, वे हाजिर ही नहीं है, तो वे बंध का कारण कैसे हो सकते हैं? इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्मों का उदय नवीन कर्म बंध में निमित्त नहीं हो सकता, ये तो उनको रूल आउट कर दिया। अघाती कर्मों के विपाक का फल तो बाह्य संयोग शरीर आयु आदि रूप से मिलता है, ये तो सब परद्रव्य है, और परद्रव्य बंध का कारण नहीं हो सकते। अभी हमें विशिष्ट तातावेदनी से घर का संयोग हुआ, तो ये घर हमारे नवे कर्म बंध का निमित्त होगा कि नहीं होगा? ये घर हमें बंध कराएगा कि नहीं कराएगा? वो तो परद्रव्य है, वो बंध नहीं कराएगा। अभी बंध काहे से होगा वो बात बाद में आएगी, पहले तो क्या, ये शरीर विशिष्ट मिला तो शरीर ने हमें नया बंध कराया, शरीर नया बंध कराएगा क्योंकि ये तो परद्रव्य है, इसलिए परद्रव्य जीव को बंध नहीं करा सकता। तो आगे बात आएगी, देखो हाँ, परद्रव्य बंध का कारण नहीं हो सकते। अब रही बात एकमात्र मोहनीय कर्म की, जिसके दो भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनी के उदय में मिथ्यात्व होता है, यानी श्रद्धा की विपरीतता होती है, और चारित्र मोहनी के उदय में कषा यानी राग द्वेष होते हैं, जो चारित्र के विभाव है। समझ में आता नहीं सर? कुछ नहीं समझा तो पूछ लेना, क्योंकि मैं तो अभी आसान इसलिए पढ़ भी जा रही हूँ और इसमें सारा एक्सप्लेनेशन आ रहा है। श्रद्धा की विपरीतता में यह जीव स्वयं को जीव न मानकर, देखो क्या क्या किया इसने, वो है तो जीव परंतु अपने को जीव नहीं माना, तो क्या माना? तो आठ कर्मों के उदय में प्राप्त जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय को ही यह मैं हूँ मानता है। अब आठ कर्मों के उदय में क्या क्या मिली जुली अवस्था हुई उस पर भी बताते कि नाम कर्म के निमित्त से मिला हुआ शरीर मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बलवान हूँ, ऐसे मानता है। गोत्र कर्म के निमित्त से प्राप्त उच्च कुल के कारण मैं उच्च कुल वाला हूँ ऐसा मानता है। आयु कर्म के उदय से लंबी आयु प्राप्त हुई तो मानता है कि मैं दीर्घायुषी हूँ, कसरत दवा परहेज आदि ठीक करने से मैं जी रहा हूँ, ये अन्य के कारण मैं जी रहा हूँ ऐसा मानता है। सातावेदनी के उदय के निमित्त से प्राप्त घर बार पैसा इष्ट संयोग को ये मेरे है और मैंने बड़ी बुद्धि के साथ इन्हें इकट्ठा किया है ऐसा मानता है। ये सारे कार्य किसके हैं? कर्म के। और मानता किसे है? अपने हैं ऐसा मानता है। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ट्यूशन के साथ पढ़ने से मेरी बुद्धि बढ़ गई मानता है। निमित्त से ज्ञान हुआ माना ना उसने, ट्यूशन लगाने से मेरी बुद्धि बढ़ गई ऐसा मानता है। ज्ञानावरण कर्म के उदय में होने वाली ज्ञान की हीनाधिकता जितना ही अपना ज्ञान सामर्थ्य मानता है, यानी अपना सामर्थ्य तो सर्वज्ञत्व स्वभाव है, केवल ज्ञान में स्वभाव शक्ति रूप से हूँ ऐसा नहीं मानता। जितना अपना ज्ञान है, देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, क्लास में सबसे फर्स्ट आता हूँ, यानी अपने को उतना ही माना उसने। उसमें अहम बुद्धि क्यों हुई उतने इंटेलिजेंस में? क्योंकि अपने उस रूप माना अपने को। यदि अपने को उस रूप नहीं मानता, केवल ज्ञान रूप शक्ति रूप मानता तो उस इंटेलिजेंट में भी ऐसा लगता, अरे हम कहाँ पढ़े, वो कहाँ, मेरा स्वभाव केवल ज्ञान। जो गंधर है जिनके पास चार ज्ञान है, मति श्रुत उदय और मन परे ज्ञान, और वो श्रुत ज्ञान भी पूरा श्रुत ज्ञान है, बारह अंगों का ज्ञान है, फिर भी वो केवल ज्ञानी के सामने अपने को कैसा मानते? जैसे हम, अरे हम कहाँ शुद्र है, केवल ज्ञान कैसा दिव्य ज्ञान है, महान ज्ञान है, और उसके सामने हम कुछ भी नहीं ऐसा कहते, कहने के लिए नहीं, हम मानते भी है वैसे जानते भी है कि ये ज्ञान कुछ नहीं उनके सामने। और ये अल्प बुद्धि वाला क्या मानता है? मैं कितना बुद्धिमान हूँ, क्यों? क्योंकि उस पर्याय जितना ही अपने को उसने माना है, इसलिए उस पर्याय में उसको अहम बुद्धि आती है। देखो दूसरों से मैं कितना बुद्धिमान हूँ ऐसा उसे लगता है। सम्यक दृष्टि जी को ऐसा कभी नहीं होता, उसको मद क्यों नहीं होता? क्योंकि उस पर्याय जितना अपने को कभी मानता ही नहीं हो, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, उसको उस इंटेलिजेंस में उसको कभी मद नहीं होता, क्योंकि अपनी शक्ति को पहचान लिया है उसने, सर्वज्ञत्व शक्ति वाला मैं हूँ, तो इस छोटी सी पर्याय की क्या बात। नीचे है ना, एकदम नीचे, उतना ही अपना ज्ञान सामर्थ्य मानता है। दर्शनावरण कर्म के उदय में आने वाली गाढ़ निद्रा में सुख बुद्धि मानता है। ये सारा मिथ्या जीव का वर्णन चल रहा है। देखो मुझे कितनी अच्छी गाढ़ निद्रा है तो मैं सुखी। अभी यहाँ तो हम 18 दोष गिनाते हैं अयंत के, मालूम है ना पहला दोष कौन सा है जो अयंत में नहीं होते? भूख। और यहाँ माँ आती है डॉक्टर के पास, क्यों? मेरे बच्चे को भूख नहीं लगती। और हम जाते हैं क्यों? रात को देर तक हमें नींद नहीं आई, तो हमने दोष तला ऐसा नहीं माना, हम तो आकुलित हो जाते हैं। तो अपना विचार करना। सातों ही तत्व संबंधी विपरीत मान्यता लिए हुए है ये मिथ्या प्रीति। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में होने वाले राग द्वेष को अपना स्वभाव मानता है। जैसे मैं दयावान हूँ कहता ना, मैं बहुत दयालु हूँ, फलाना आदमी क्रोधी है ऐसे मानता है। जैसे अपने राग द्वेषों में अपनत्व करता है, पर को भी वो राग द्वेष रूप ही देखता है। जो अपने को स्वभाव रूप पहचानता है, वो सामने वाला कितना भी क्रोध क्यों नहीं करे, वो उसको भी स्वभाव दृष्टि से देखता है। ऊपर की सभी बातें कर्म के उदय में हुई जीव और पुद्गलों की अवस्थाएं हैं, उन सबको मिलाकर उस पर्याय जितना ही मैं हूँ मानने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है, उसकी श्रद्धा विपरीत है। कर्म सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, परंतु उसके उदय के फलस्वरूप कार्य तो अनुभव में आता है। देखो हमने कर्म कभी नहीं देखे, परंतु अभी ज्ञान की हीनता हो रही है तो ख्याल में आ रहा है दर्शन की। ये जो मिथ्यात्व या सम्यक्त्व है या राग द्वेष है या जो कुछ है, वो अपने आप को ख्याल में आ रहा है ना, यानी उसका फल तो ख्याल में आ रहा है, परंतु वो दिखता तो नहीं है। कर्म दिखता नहीं है, परंतु उसके सारे आठों ही कर्मों का फल तो हम हर हमेशा देख रहे हैं। इन सभी बातों को जानने वाला तो जीव स्वयं ही है, परंतु अरूपी होने के कारण इंद्रियों द्वारा नहीं दिखता, अनुभव में नहीं आता। इसलिए अभी क्या हुआ, एक तो कर्म नहीं दिखे और स्वयं जीव आरोपी होने के कारण वो भी नहीं दिखा, इसको इंद्रियों के द्वारा जानने की आदत है तो इसने जीव को भी कभी देखा नहीं इंद्रियों के द्वारा। तो क्या माना, कर्म भी नहीं दिखे उसके फल दिख रहे, उसके फल क्या, शरीर दिखा, ये ज्ञान की हीनाधिकता दिखी, अन्य अन्य संयोग दिखे, तो यही मैं हूँ और ये मेरे है ऐसी सारी मान्यता उसने कर ली। जीव भी नहीं दिखाई दिया उसको, कर्म भी नहीं दिया दिखाई दिया, कर्म का फल दिखाई दिया और जानन रूप कार्य तो हो ही रहा है हर समय, तो जानन रूप कार्य इस शरीर में से हो रहा है इससे उसने मान लिया, तो अपना भिन्न अस्तित्व उसने कभी पहचाना ही नहीं। इसलिए कर्मों के इन कार्यों को जीव अपना स्वरूप मान लेता है। नीचे से दूसरी पैराग्राफ, जीव की सबसे बड़ी भूल तो यह है कि उसने स्व का स्वरूप ही विपरीत माना है। देखो छोटी सी भूल है क्या, मैं हूँ ऐसा तो हर एक को अनुभव में आ रहा है, परंतु अपना स्वरूप को सही नहीं पहचाना, इस वजह से इस काल्पनिक स्व के लिए, ये कौन सा स्व है, हम कहते मैं कहते क्या, ये जो कुछ शरीर है इसी को मैं मानती हूँ, ये मेरा फोटो देखो ये आईने में मैं दिख रही हूँ ऐसे ना, इसी को मैं मान लिया है, तो ये काल्पनिक मैं हुआ, मैं तो इतना ही था, ये इतना मैं था और इसके साथ शरीर और कुछ अन्य बातें, इन सारों को ही मैं मान लिया, इसका तो आता पता ही उसको पता नहीं है, और ये जो बाहर सारा उसके साथ मिला हुआ दिखता है पुद्गल का अन्य अन्य सारा, उसको ही मैं मान लिया। तो इस काल्पनिक स्व के लिए जो बातें उसे अनुकूल प्रतीत होती है उसके प्रति उसे राग उत्पन्न होता है। मूल में भूल क्या कि स्व को नहीं पहचाना, जो स्व नहीं उसको स्व माना, अब जिसको स्व माना उसको अनुकूल क्या है उसमें राग करने लगा, और जो बातें प्रतिकूल प्रतीत होती है उनके प्रति उसे द्वेष उत्पन्न होता है। इतने से ही यह जीव रुकता नहीं, अकेले राग द्वेष हुए तो होते परंतु इतने पर वो रुका नहीं है। मिथ्यात्री जीव, एक तो मैं मानने को उसने गलती की, जो मैं नहीं उसको मैं माना, तो उसके लिए जो अच्छा बुरा उसके लिए उसने राग और द्वेष किया, और अकेले राग द्वेष करके रुका नहीं तो क्या हुआ देखो, परंतु उन राग द्वेषों को जो कि क्षणिक है और विकार भी है, दोनों है, क्षणिक विकार है, उसको अपना स्वभाव मानता है, करने योग्य मानता है, क्योंकि ऐसे हम एक दूसरे को उपदेश भी देते ना कि ये ऐसा मत करो वैसा करो, यानी इन राग द्वेषों को ही करने योग्य माना, उपदेश तो सम्यक दृष्टि भी देगा परंतु उसके पीछे उसका अभिप्राय वैसा नहीं होगा। एक प्रकार का राग छोड़कर अन्य विशिष्ट राग करना चाहता है। लोग पूछते ना अरे समय दर्शन में तो ये तो करना चाहिए ना, यानी जोर कहाँ होता है उनका, चाहिए पर, पुण्य तो करना चाहिए ना, अरे पुण्य तो सहज आएगा, समय दृष्टि को भी आएगा और समय तो से पहले वो जो जिसका मिथ्यात्म मंद हो रहा है उसको भी आएगी, परंतु वो चाहिए वाला जो अभिप्राय का जोर है वो अपनी गलती बताता। विशेष राग करना चाहता है और उनको उपदेश भी इसी प्रकार का देता है, अकेले स्वयं नहीं वो दूसरों को उपदेश भी ऐसा ही देगा। इस तरह मोहनीय कर्म के उदय में होने वाले मिथ्यात्व और राग द्वेष के निमित्त से नवीन बंध होता है। मिथ्यात्व के कारण इष्ट अनिष्ट मानता है पर पदार्थों को, राग द्वेष भी होते रहते हैं, और मिथ्यात्व और राग द्वेष इन दोनों से मिलकर नवीन आठों ही कर्मों का बंध होता है। देखो आठ कर्मों का उदय है इसीलिए आठ कर्म बनते, ऐसा नहीं है, पर आठ कर्मों में जितना मोह तीव्र होगा उतने आठों ही कर्मों के बंध भी वैसे तीव्र होगा। राग द्वेष जितने तीव्र उतने प्रमाण में बंध भी ज्यादा। परसों बात आई थी ना आपके संडे की क्लास में कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तो जितने अंश में सम्यक दर्शन है उससे तो बंध नहीं होता, तो किससे बंध होता है, तो राग द्वेष से बंध होता है। जितने अंश में सम्यक ज्ञान है उससे तो बंध नहीं होता, जितने अंश में राग है उससे बंध होता है, हमेशा वो राग पर घटा होना है, और जितने अंश में सम्यक चारित्र है उससे तो बंध नहीं होता, क्योंकि ये सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रत्नत्रय है, वो शुद्ध स्वरूप है, धर्म है, उससे बंध नहीं होता, तो जितने अंश में राग है उतने अंश में बंद होता है। कहाँ पे गया? हाँ हाँ, तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ में सूत्र है कि मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग बंध के हेतु है, यानी कारण है। ये कहाँ आया है, कौन से अधिकार में? बराबर आठवें का पहला सूत्र है। सर्वप्रथम मिथ्यात्व का अभाव करने पर ही बाकी बंध के हेतु क्रम से नष्ट होते हैं, परंतु मिथ्यात्व कायम रखकर भले कितने ही शुभ राग क्यों न करे बंध का अभाव नहीं होता। हमने देखा था ना, वो तो 41 प्रकृति का बंध का अभाव होगा, वो तो मिथ्यात्व छूटकर सम्यक्त्व में आकर ही होगा। मिथ्यात्व कायम रखे और बहुत उच्च प्रकार का शुभ भाव करे, मुनि दीक्षा भी ले, तो भी एक भी प्रकृति का बंध का अभाव नहीं होगा। सारे ही यथायोग्य मिथ्यात्व अवस्था में बंधने वाली प्रकृति बंधने योग्य रहेगी। वह मैं अनंत ज्ञानादि गुणों का पिंड हूँ, ध्रुव शुद्ध स्वयं सिद्ध पदार्थ हूँ। ये स्वयं सिद्ध शब्द बहुत महत्व का है, ये पंचाध्यायी में तो कितनी बार आया स्वयं सिद्ध। ये जीव जीव ही क्या, सारे ही छह द्रव्य स्वयं सिद्ध है, उनको किसी ने बनाया नहीं है। एक एक द्रव्य में अनंत गुण है, वो अनंत गुण किसने बनाए, वे भी स्वयं सिद्ध है। हर एक गुण में हर समय एक एक पर्याय हो रही है, वो कौन करता है, वो स्वयं सिद्ध है। ये सारे ही द्रव्यों में अपनी टिकने की भी और परिणमन करने की भी स्वयं सिद्ध शक्ति है। यानी जीव अन्य किसी पर निर्भर है नहीं, कोई भी द्रव्य नहीं, कोई अन्य द्रव्य का कर ही नहीं सकता है। जीव ही ऐसा उल्लू है कि वो मानता है कि मैं परद्रव्य का करूं, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, समझ है। तो समझ से क्या मानता है, अरे इसको क्या समझता है अपना कार्य कैसा करना, मैं करूं तो ये बदले, नहीं तो कैसे बदले, ऐसे मानते हैं ना। अरे ये तो सारे अजीव पदार्थ है, इनको क्या पता है कि कैसे बैठना, कहाँ रहना, क्या करना। मगर एक एक वस्तु जहाँ पर स्थित है वो अपने कारण है कि हमने लाई इसलिए वहाँ आ गए। ये एक एक बात पर विचार करना। अब यहाँ ब्रिज नहीं था, ये ब्रिज बना, किसने बनाया? तो हम वो गाली देते इनको, ये ऐसा ऐसा पैसा खाया ना उन्होंने ब्रिज बनाया। अभी उसमें से एक एक परमाणु न जाने कहाँ जंगल में पड़ी थी मट्टी, वहाँ से लाकर यहाँ आया, वही परमाणु क्यों नहीं आया, अन्य क्यों नहीं आया, वही क्यों आया? हाँ, उसकी वैसी योग्यता, वो अपने कारण आया। और हम क्या मानते, हम अलग अलग बाह्य कारण ढूंढ कर उनसे राग द्वेष करते रहते हैं हर एक चीज में। देखो ये जो हम तत्व सीखते हैं तो उसके एप्लीकेशन भी करना चाहिए। हम 24 घंटे जो हमारे कार्य हो रहे हैं आजू बाजू में, तो उसके बारे में इस तत्व ज्ञान की दृष्टि से विचार करना। ये दूसरों को बताने के लिए, खाली याद करने के लिए, रटने के लिए तत्व नहीं है, वो अंदर में अपने परिणमन वैसा हो जाता है, तो सारे ही कार्य सहज रूप से भाषित होने लगते हैं। पहले तो अपना उसमें कर्तृत्व कितना था, अहमपना कितना था, और अभी सारों में से अपना वो जैसे कुमार हाथ छोड़ देता है ना, वैसे अपना कर्तृत्व वहाँ छूट जाता है और ज्ञाता हो जाते, सहज ज्ञाता दृष्टापना रह जाता है। वो स्वयं सिद्ध पदार्थ हूँ, इस तरह अपने शाश्वत अस्तित्व, अपना अस्तित्व कैसा है, शाश्वत है। किसने बनाया है, किसी ने नहीं, वे अकृत्रिम चैतन्य, अभी हमने देखे थे ना, वो शाश्वत है और अकृत्रिम है। वैसे हम भी शाश्वत है और अकृत्रिम है। पता है वो शाश्वत जो है अकृत्रिम चैतन्य, उनमें भी परमाणु निकल जाते और नहीं आते, अपने में कितने गुण निकल जाते और नहीं आते। तो सबसे शाश्वत कौन है, मैं स्वयं हूँ। अन्य जीवों को भी तरफ देखने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं शाश्वत हूँ यहाँ। तो शाश्वत अस्तित्व एवं ध्रुव स्वभाव का स्वीकार करके ज्ञान की प्रकट पर्याय, अभी हमारे हर समय ज्ञान 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 जानना 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 प्रकट पर्याय है ना, तो वो प्रकट पर्याय राग द्वेषों को जानना छोड़कर, क्या छोड़कर, राग द्वेष को छोड़कर लिखा है क्या? हाँ सिद्धार्थ, क्या लिखा, जानना छोड़कर, यानी उस पर हम जो अपना उपयोग उसमें बर्बाद हो रहा था राग द्वेषों में, या अभी उससे छूटकर जब आत्मा संबंधी विकल्पों में आए, आत्मा ऐसा है वैसा है वैसा है, वो भी विकल्प, उसको भी राग कहा, तो जब तक उसको जानने में हमारा उपयोग रुका रहेगा तब आत्मा को हम नहीं जानेंगे। तो उनको जानना छोड़कर लिखा है शास्त्र में, ऐसा ही आएगा कि राग द्वेष को छोड़ो और आत्मा को ग्रहण करो। तो उसको छोड़ो का अर्थ आपने काहे से पकड़ा था, ज्ञान से ही पकड़ा था, तो ज्ञान से ही छोड़ना है, यानी उनको जानते रहे थे ये उनको पकड़ना था, अभी उनको जानने रूप उपयोग वहाँ खर्च हो रहा था हमारा, उसके प्रति अरुचि हो गई, ये हमारा है ही नहीं ऐसा हमने निश्चित किया, तो अपनी अरुचि हो जाती है, ज्ञान सहज वहाँ से पलट कर अपने को जानने लगता है, तो उसको कहते हैं हमने छोड़ दिया उसको। ये छोड़ना यानी अभी इसको दूर हटाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो राग द्वेष को जानना छोड़कर अपने ध्रुव स्वभाव को जानने में एकाग्र होने पर स्वभाव उत्पन्न यानी स्वभाव में से उत्पन्न होने वाला सहज अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं ना। परंतु राग को ही जानते रहने से और उसे अपना स्वभाव मानने से, देखो दोनों बातें, एक तो राग को ही जानता रहा और उसको अपना स्वभाव माना, राग दुख रूप होने के कारण इस जीव को दुख की ही अनुभूति होती है, यह जीव परद्रव्यों को दुख का कारण मानकर अधिकाधिक राग द्वेष करने से अधिक दुखी होता है। इस तरह आज हमने आठ कर्मों के नाम तथा उनके घाती कर्म और अघाती कर्म भेद, इन आठ कर्मों के उदय में प्राप्त होने वाले फल आदि बातें देखी। हमने यह भी देखा कि सात या आठ कर्मों का बंधन निरंतर होता है, आठ कर्मों का उदय निरंतर होता है, परंतु मोहनीय कर्म के उदय में होने वाले मिथ्यात्व और राग द्वेष का निमित्त पाकर ही, अकेला निमित्त लिखा, पुनः नवीन कर्म का बंध होता है। पाप करने से पाप कर्म बनते ही है, परंतु पुण्य करने पर भी पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म बनते हैं। मुझे याद है मैंने तुम्हें गृहपाठ करने के लिए कहा है मोक्ष मार्ग प्रकार के पृष्ठ क्रमांक 32 से 44 पढ़ना, दूसरा अध्याय शुरू से पढ़ोगी तो अधिक अच्छा रहेगा, पत्रों द्वारा बहुत स्थूल कथन हो सकता है, तुम्हारी इस विषय में उत्कंठा जागृत हो और तुम ग्रंथों का अध्ययन शुरू करो, यही मेरा मूल उद्देश्य है। तो अभी 3 दिन की छुट्टी है तो उसमें तो ये गृहपाठ आप कर सकते हो। रविवार को पूछ लेना। आप अगला इसमें से पढ़ लेना, करणानियों पुस्तक में से ही अगले दो पाठ पढ़ना। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तकन सदा देतो मूल।